हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 69। इस श्लोक में हम ये समझेंगे कि सारे लोग कृष्ण भावना मृत को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोगों को कृष्ण भावना बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, तो इसका कारण भगवान यहाँ पे बताएंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इस श्लोक को हम अभिधा वृत्ति के अनुसार नहीं समझेंगे, गौण वृत्ति के अनुसार समझेंगे। यानी कि डायरेक्ट मीनिंग जो है भगवान जो बोल रहे हैं, केवल उसका अर्थ उसी तरह से नहीं लेना है कि जो भक्त हैं जब वो जागते हैं तो भौतिकतावादी लोग सोते हैं और जब वो लोग सोते हैं तो हम जागते हैं। ये तो होता ही है, क्योंकि प्राय सुबह भक्त लोग उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन इस अर्थ के अलावा भी क्या अर्थ है उसको हम तात्पर्य में देखेंगे। कहने का अर्थ ये है, जिन वस्तुओं में, जिस वातावरण में भक्त अपनी इंद्रियों को संलग्न करेगा, उस वातावरण में एक भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खींच लेगा। जैसे हरे कृष्णा कीर्तन जहां होगा वहां भक्त बड़े उत्साह से अपने इंद्रियों को नियोजित करेगा, जहां कथा हो रही है भगवान की भक्तों के द्वारा तो बड़े उत्साह से नियोजित करेगा। लेकिन जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति है ऐसी जगहों में जाना पसंद नहीं करेगा। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भौतिक वार्ता में, पिक्चर देखने में, न्यूज़पेपर में और बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत रुचि दिखाएंगे, कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वस्तु अच्छी है। लेकिन जो भक्त है वो ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते, और ये स्वाभाविक भी है। इस बात को श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसः। जो भौतिक वार्ताएं हैं उसमें हंस जैसे भक्त, जो भक्त लोग हैं जो हंस के समान होते हैं, वो भक्त लोग उसमें संलग्न नहीं होते। जो भौतिक जगत की वार्ता है, भोग की वार्ता है, वार्ता मतलब चर्चा, तो उसमें भौतिकतावादी लोग बड़े प्रेम से लगते हैं, जैसे कोई गिद्ध या कौवे एक मरे हुए कुत्ते के शरीर पे, शव पे बड़े चाव से बैठ के वहां पे भोजन करते हैं। लेकिन हंस को हम कभी भी वहां पे उपस्थित नहीं देखेंगे। हंस का स्थान तो मानसरोवर जैसे सुंदर सुंदर रमणीय स्थान होता है, और उसका भोजन है मोती। हंस का एक गुण होता है कि दूध से वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो हंस कहने का अर्थ है भक्तों को कि भक्त लोग समझते हैं जीवन का सार है कृष्ण भक्ति, कृष्ण चर्चा, भगवत चर्चा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना। तो ऐसे ही जगहों पे भक्तों का जमावड़ा होता है। और अगर हम बीच में हैं, कभी कभी कौवे हैं और कभी कभी हंस, तो हमको अपने इस बात पे विचार करना चाहिए कि मुझे हंस बने रहना है, हंस बनने का प्रयास करना है या कौवा बनना है। तो खैर, तात्पर्य को देखेंगे। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जब पहली लाइन में बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। जो भौतिकतावाद में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। जितनी भी वस्तुएं इकट्ठी हैं हमारे पास भोग के लिए, जो भी भोग की सामग्री है उसको जुटाने में, उसको बनाने में बहुत विशाल बुद्धि की आवश्यकता लगी है। लेकिन उद्देश्य क्या रहा है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। और उसका लाभ क्या हुआ है? असंतुष्टि। बुद्धि का उपयोग हुआ, अपनी इंद्रिय तृप्ति करी, लाभ क्या हुआ? असंतुष्टि। लेकिन दूसरा है व्यक्ति जिसकी बुद्धि मतलब आंतरिक है। एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो बाह्य इंद्रिय तृप्ति की भावना के लिए, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा को जुटाने के लिए जब बुद्धि का उपयोग किया जाता है, तो इसको बोला जाता है या बहिर्मुखी चेतना, बहिर्मुखी भक्ति, बहिर्मुखी बुद्धि। मुख मतलब होता है हमारा मुख, हमारा चेहरा, और बहिर्मुख मतलब बाहर की ओर बहने वाला। तो इस प्रकार की बुद्धि जो इंद्रिय विषयों की तरफ जाती रहती है, जो जगत की तरफ जाती रहती है, ये बहिर्मुख चेतना, बहिर्मुख बुद्धि कहलाती है। और अंतर्मुखी चेतना, अंतर्मुखी बुद्धि क्या होती है? जो आत्म तत्व का निरीक्षण करती है, हम कौन हैं, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, भगवान को हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, इन सब के लिए हमको बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये जो है संयमी पुरुषों के ऊपर होता है, जिसकी इंद्रियां संयमित होंगी वही इस प्रकार की बुद्धि से संपन्न हो पाएगा। इस बात की चर्चा हमने श्लोक क्रमांक 64 में किया था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और कृपा का अर्थ समझाया गया था, कृपा का अर्थ होता है शुद्धता, शुद्ध चेतना। और शुद्ध चेतना से क्या होता है उसको समझाया गया था श्लोक क्रमांक 66 में कि जब व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है तो बहुत सारे दुखों की हानि होती है और वो सुख की प्राप्ति करता है, शांत हो जाता है उसका मन, भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाता है। तो जो विचारवान व्यक्ति हैं, जो बुद्धि जो जो आत्मनिरीक्षक हैं, आत्मसंयमी हैं, वो भगवान की भक्ति की तरफ अपनी इंद्रियों को और बुद्धि को लगाए रखते हैं। विचारवान मनुष्य पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो आप समझ रहे हैं कि श्लोक का अर्थ एक्चुअली क्या है कि जो कार्य जो रुचियां हैं वो दोनों लोगों की बिल्कुल अलग हो जाएंगी। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर लाइन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा है उसको प्रत्यक्ष रूप से सुख मिलता है। जो भक्त लोग भी इस क्लास को सुन रहे हैं, जो लोग जब करते हैं वो कालांतर में महसूस करेंगे या महसूस किया भी होगा कि बहुत बार हम लोग को हरि नाम का जप करना बहुत अच्छा लगता है या भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप इस चीज को एक भौतिकतावादी व्यक्ति को केवल क्लास देकर नहीं समझा सकते। वो हमेशा यही बोल सोचेगा ये हरे कृष्णा कर रहे हैं तो समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं है कि इस हरे कृष्णा के द्वारा किस प्रकार से चेतना शुद्ध होती है और चेतना शुद्ध होने के कारण ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें कितना सुख मिलने लगता है, कितनी शांति मिलती है। पहले तो शांति मिलती है, भौतिक वासनाओं का शमन होने लगता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अनुभव नहीं किया है उसके लिए तो ये रात का समय हो जाएगा, यानी कि रात का समय है सोने का। तो उस उपमा के द्वारा ये समय हो गया अपनी इंद्रियों को बिल्कुल अलग कर लेने का, अरे क्या हरे कृष्णा करना, वहां क्या जाना, हमारे पास समय नहीं है। और इसी प्रकार से भक्तों को जब जो अच्छे भक्त हैं उनको किसी भौतिकतावादी वातावरण में बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि भाई आप एक गोष्ठी में आइए, यहाँ पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, तो भक्त कह देते हैं हाँ हाँ हम आएंगे, लेकिन फिर वो जाते नहीं क्योंकि उनकी रुचि नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे आप लोगों को इसका अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रायः जो लोग भक्ति में आए हैं वो कोई 5 साल की उम्र से तो नहीं आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि भौतिक जगत में कोई उनको अनुभव नहीं रहा है। भौतिक वार्ता का, भौतिक संबंधों का, भौतिक चर्चाओं का, भौतिक रूप से किसी भी कार्य को करने का अनुभव प्राय हम सब लोगों को है। और हमने महसूस किया था किस प्रकार से हमारा जीवन असंतुष्ट रहा है। तो बहुत सूक्ष्म रूप से ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी मन से उत्पन्न इच्छाओं को त्याग सकते हैं, जिसको भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं शुरुआत में सर्वान पार्थ मनोगतान प्रजहात या प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो आत्मन्यवात्मनः तुष्टः स्थितधीर मुनिरुच्यते स्थितप्रज्ञस्त तदोच्यते। जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वो समझ गया है कि मेरे मन से उत्पन्न होने वाली भौतिक कामनाओं की तुष्टि के द्वारा मैं न तो कभी संतुष्ट हुआ हूँ और ना आगे कभी संतुष्ट होऊंगा। तो इसको त्याग करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है और केवल लॉजिकली नहीं, केवल उस अनुभवात्मक रूप से अनुभव करता है जब उस सुख को, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि मैं इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, और ये एक प्रकार का स्वप्न देखने जैसा है। जैसे कभी आप बहुत प्यासे हो और आप सो जाएं, मान लीजिए थके भी हैं, तो स्वप्न आता है कि आपको प्यास लग रही है और आप पानी पी रहे हैं। तो स्वप्न में बहुत प्रयास करने के बावजूद कि पानी से मेरी शुद्धा शांत मेरी जो है जो प्यास है वो शांत हो जाए, व्यक्ति शांत नहीं होता है। उसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न में जिसमें हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने से हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। और आप देख भी सकते हैं कि व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, परिवार इकट्ठा करता है, सोचता है कि इससे सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख हमेशा थोड़ा दूरी पे ही रहता है। सुख की केवल आशा रहती है कि हम इस प्रकार से कुछ इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। तो देखा जाए तो हम लोगों की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं अगर इस प्रकार से इनको बताएं कि भाई आपको ये धोखा किया जा रहा है आपके साथ माया के द्वारा। इंद्रिय सुख के द्वारा आप कभी सुखी नहीं रह सकते। तो अगर इसको व्यक्ति समझ जाए तो उसका मुक्ति का पथ जो है वो खुल जाएगा। ये जो पहला तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इंद्रिय भोगों की तरफ भागना बंद करे, तब तो भगवान की तरफ कुछ मुड़ पाएगा। और अगर इंद्रियां भगवान भोगों की तरफ ही चली जाती रहीं, या हम यही सोचते रहे कि नहीं मैं सुखी हुआ तो नहीं हूं लेकिन सुखी हो जाऊंगा आगे जा करके, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की तरफ कैसे मुड़ पाएगा। तो इसलिए एक आत्मनिरीक्षक व्यक्ति को, जो भक्त हैं, उनको चिंतन करना चाहिए। देखिए, भक्ति में आने से पहले मैं सुखी नहीं था, इंद्रिय भोग करके मैं सुखी हुआ नहीं, तो अब मुझे भक्ति में आने के बाद प्रयास करना है कि बिल्कुल कोई इंद्रिय तृप्ति में ना लगूं, अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की सेवा में लगूं, ताकि मेरा हृदय जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए और मैं भक्ति के सुख का अनुभव करने लग जाऊं। कि एक बार भक्ति के सुख का अनुभव होने लग जाता है, फिर अपने आप ही इन भोगों की वृत्तियां चली जाती हैं हमारे हृदय से। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आत्मनिरीक्षक व्यक्ति यानी जो आत्मसंयमी है, जो भक्त हैं, वो समझते हैं सुख और दुख तो मन ही अनुभव करता है और उसका वो अनुभव भी करते हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना वो छोड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख और दुख को लांघने का एकमात्र तरीका है कि अपने हृदय को हम शुद्ध कर लें, और वो भगवान की भक्ति के द्वारा ही होता है। जब एक बार हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की भक्ति से मिलने वाले सुख का हम अनुभव कर पाएंगे, तो अपने आप ही सुख दुख का हमें मतलब याद ही नहीं रहेगा। लेकिन तब तक, जब तक ये नहीं स्थिति आ रही, तब तक हमको दृढ़ता के संग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहना चाहिए। और उसके बाद हम सिद्ध हो जाएंगे तो फिर सुख दुख का कोई प्रश्न नहीं होता है, तो भगवान की भक्ति में हम विभोर रहेंगे। तो इसलिए भौतिक घात, भौतिक कष्ट जीवन में आएंगे आपके मेरे सभी के, लेकिन उनसे अविचलित रह करके व्यक्ति भक्ति के कार्यों में लगा रहे। ये भी आ सकता है कि लोग बोले, अरे तुम क्यों भक्ति कर रहे हो, ये सब क्या फायदा है करके। इस पीछे बहुत आवश्यक है समझना, इस जगत में हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें कुछ प्रोत्साहन चाहिए, और वो प्रोत्साहन इस तरह से आता है कि लोग बताते हैं कि तुम सही कर रहे हो। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जो लोग सूर्य नमस्कार या कोई प्राणायाम करते हैं तो कुछ समय के बाद लगता है मुझे फायदा हो रहा है क्या, या मुझे छोड़ देना चाहिए क्या, लेकिन जब हम उसकी महिमा को सुनते हैं और अब समझते हैं हमारे बहुत लाभकारी है, तो ना चाहते हुए भी हम उसको करते हैं। मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, तो अब जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो जब एग्जाम होता है तो एग्जाम की वजह से बच्चे लोग अच्छे से पढ़ते हैं और उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, हमने हमारे तो अच्छे नंबर आए, हमने अच्छे से पढ़ाई करी। इसी प्रकार से हम हरि नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बार बार शास्त्रों से सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं हरि नाम जप करने का, भगवद गीता को पढ़ने का, ये बिल्कुल सही है, इसमें करते रहना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके द्वारा, इस श्रवण की विधि के द्वारा हमारी चेतना जो है वो भगवान में एकदम फिक्स रहेगी और हम भौतिक घातों से प्रभावित नहीं होंगे। अब अगला श्लोक जिसकी चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं या अभी नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि अपने चित्त में हम देखते हैं कि भौतिक जो इच्छाएं वो आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों और उससे क्या लाभ होगा, उसकी चर्चा हम लोग अगले श्लोक में करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है तो उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। 70वां श्लोक, हरे कृष्णा।